शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय एक। ये पुस्तक शमूएल के व्यक्तिगत इतिहास की पुस्तक है। वो इसराइल के न्यायियों में अंतिम था। ये पुस्तक इसराइल के राजाओं के युग का आरंभ करती है। अध्याय एक पद एक से पांच तक एप्रेम के पहाड़ी प्रदेश के रामाते मसोपिम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम एक पुरुष था। वो एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलिहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था। और पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के प्रभु को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। पहले उनका आराधनालय वही था और वहां होपनी और पिनहास नामक एली महायाजक के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी को, पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति करता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। दृश्य यह है कि एलकाना की दो पत्नियां थी। एक को वो दूसरी से ज्यादा प्यार करता था। एक के पास बहुत बच्चे हैं, परंतु जिसको वो सच में प्यार करता था उसके कोई बालक नहीं है। अध्याय एक पद छह में परंतु उसकी सौत इस कारण से, वो हन्ना की सौत थी अथवा एलकाना की दूसरी पत्नी, अतः दो पत्नियों के बीच में फूट थी, क्योंकि वे दोनों एक आदमी का ध्यान आकर्षित करने और प्यार पाने के मौके की तलाश में रहती थी। कोई आदमी जो ये सोचे कि वो दो औरतों की सब जरूरतों को पूरा कर सकता है वो बेवकूफ है। ऐसी स्थिति में आप पर परेशानियां तो आनी ही थी। उन दोनों ने भी ऐसे ही किया। घर के अंदर की कलह, क्योंकि अध्याय एक पद छह में लिखा है यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वो इस बात को रह रह कर उठाती थी। बच्चा पैदा करने की उसकी अयोग्यता पर वो उसे सच में ताने सुनाती रहती थी। एलकाना ने शीलो जाने की योजना बनाई, छुट्टियां बिताने को, उत्सव को मनाने को, खुशियां मनाने का समय। ये सच में एक उत्सव का और आनंद का समय होता है जब आप परमेश्वर के भवन में आराधना करने जाते हैं। ये मेरे लिए रुचिकर विषय है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना आनंद और सुख का अनुभव हो। इसराइली ऐसे समय को पर्व कहा करते थे। वे वास्तव में उत्सव का समय होता था। वे मंदिर में जाकर बड़ा उत्सव मनाते थे। वो छुट्टी का समय होता था जब वे परमेश्वर की आराधना के लिए उसके सम्मुख एकत्रित होते थे, आनंद और हर्ष का समय। इस प्रकार एलकाना भी इस समय के लिए मंदिर जा रहा था, साथ में अपनी पत्नी हन्ना को भी ले जा रहा था। हन्ना पूरे समय रो रही थी और वे खाना भी नहीं खा रही थी। अध्याय एक पद आठ से लेकर पद ग्यारह में इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे अन्ना, तू क्यों रोती है, खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं दस बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? यही तेरी खुशी का कारण नहीं है क्या? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौकट के एक अलंग के पास येली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रभु अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए तुझे अर्पण करूंगी। ऐसे अनेक समय आते हैं जब हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु चकित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत प्राप्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में देरी करता है। ऐसी एक स्थिति यहां भी है। निस्संदेह हन्ना एक लंबे समय के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। संतानहीन होने के श्राप से ग्रस्त उसने निस्संदेह परमेश्वर से अनेक बार प्रार्थना की थी, हे प्रभु मुझे पुत्र दे दे, प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, परमेश्वर तूने मुझे पुत्र क्यों नहीं दिया। परंतु उसकी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त होता दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर उत्तर देने में देर कर रहा था। हन्ना की प्रार्थना का उत्तर देने में परमेश्वर द्वारा देरी करने का एक कारण था। हमारे साथ भी ऐसा ही है। यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देने में देरी करता है तो उसका भी एक कारण होता है। जैसा हन्ना के साथ हुआ, अधिकांश हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। परमेश्वर हमें उसकी योजनाओं के निमित्त लाने की खोज में लगा रहता है। बाइबल कहती है दूसरा इतिहास 16 के 9 पद, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाए। अतः परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा था कि हन्ना को उस स्थान पर ला रहा था जहां उसका मन परमेश्वर और परमेश्वर की बातों में पूरी तरह लग जाए। परमेश्वर यही चाहता था। इस अंधकार के समय इसराइल के मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर को किसी की जरूरत थी। उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिससे वो बात करे और जो उसकी ओर से लोगों से भी बात करे, क्योंकि उनके इतिहास के इस युग में उन्होंने परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी थी। ये लिखा है, परमेश्वर का वचन कीमती था। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय परमेश्वर की भविष्यवाणी का वचन दुर्लभ था। परमेश्वर मनुष्यों से बात नहीं कर पा रहा था। ऐसे कोई मनुष्य नहीं था जिसके कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुले थे। अंत में संपूर्ण निराशा में हन्ना ने कहा, प्रभु अगर तू मुझे एक बेटा दे देगा तो मैं उसको जीवन भर के लिए तुझे लौटा दूंगी। परमेश्वर यही चाहता था। परमेश्वर को इसी की प्रतीक्षा थी। अतः जब परमेश्वर हन्ना को संपूर्ण समर्पण के स्थान पर ले आया, प्रभु यदि तू मुझे एक पुत्र दे देगा तो मैं उसे तुझे लौटा दूंगी, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। अब परमेश्वर बहुत बार उत्तर देने में देरी करता है। हो सकता है कि वो ज्यादा देना चाहता है, या फिर ये कि जो उसने दिया वो उसके उद्देश्य के लिए प्रयोग हो। मैं समझता हूं कि कई बार जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, बाइबल कहती है रोमियो 8:26 में, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। ये एकदम सच है। हम ज्यादा समय उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। याकूब कहता है याकूब 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि उसे अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर से व्यक्तिगत निवेदन की तरह होती है। जैसे परमेश्वर क्रिसमस फादर हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए आदि। हम प्रार्थना में परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते कि वो हमसे क्या चाहता है। हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि हम क्या चाहते हैं। अब बाइबल बताते हैं, अगर हम कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब वो हमारी सुनता है तब जो हम उससे कहते हैं वो हमें मिलता है। हम जितना मांगते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत ही कम होता है। वो मेरी अपनी इच्छा के अनुसार होता है। मैं अपने बारे में सोचता हूं कि इसे मैं अपने लिए कैसे प्रयोग कर सकता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि एक लंबे समय तक हन्ना सोचती होगी, प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए ताकि दूसरी पत्नी का मुंह बंद हो सके, क्योंकि हर समय की फटकार से वो थक चुकी थी। परमेश्वर मुझे एक बेटा चाहिए जिसकी मैं देखभाल कर सकूं, मुझे एक बेटा चाहिए जिसका मैं पालन कर सकूं, वो अपने बारे में सोच रही थी। अब परमेश्वर का उसके जीवन में काम करने से स्पष्ट होता है कि वो एक धर्मी स्त्री थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे और वहां हम उसके आनंद के बारे में पढ़ते हैं जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हम वहां हन्ना की स्तुति में उसकी धार्मिकता देखते हैं। वहां आत्मिकता की गहराई का विशेष चिन्ह है। अब वो परमेश्वर के उद्देश्य के साथ परमेश्वर की एकता में लाई गई है। परमेश्वर मुझे एक बेटा दे दीजिए और उसे उसके जीवन भर के लिए आपको वापस दे दूंगी। अध्याय एक पद 12 से 15 तक। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। वो उसके चेहरे पर तनाव देख रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैं ना तो दाक मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। याजक के द्वारा अपने ऊपर लगाए दोष का वो इनकार करती है और कहती है, मैं तो दुखिया हूं, मैंने अपने मन की बात खोलकर प्रभु से कही है। अध्याय एक पद 16 से 18 तक। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया था। स्थिति बदल गई, उसका स्वभाव भी बदल गया। वो अब फिर दुखी ना दिखाई दी, अब वो भूखी भी ना रही। उसका पति उसमें परिवर्तन देखकर अवश्य ही आश्चर्यचकित हुआ होगा, लेकिन उसने विश्वास किया। याजक के द्वारा कहे गए परमेश्वर के वचनों पर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे प्रार्थना के उत्तर में पुत्र देगा। ये विश्वास की पहचान है, ऐसा व्यवहार करना कि आपको सचमुच में मिलने से पहले मिल गया, ये एक व्यवहार है। अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ देने का वायदा किया है तो मैं क्यों मुंह बनाकर दुखी और शोकित घूमता फिरूं? अगर मैं सच में परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करता हूं तो आनंद करना शुरू कर दूंगा। असल में मेरा ढंग और मेरे कार्य, मेरा व्यवहार मेरे विश्वास के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए उसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया था, उसके चेहरे का भाव बदल गए थे। अब उसने भोजन शुरू कर दिया था। अध्याय एक पद 19 से 27 तक। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को धन्वत करके रामा यरूशलेम के उत्तरी भाग में अपने घर लौट गए। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वो यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और तीन बछड़े और एपा आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में प्रभु के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जिसने तूने सोचा था कि नशा किए हुए है, जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। यही तो वो लड़का है जिसे मैंने यहोवा से मांगा था। हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे मौके हुए हैं जब जवान दंपति आए और बच्चा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। उनमें से कुछ को तो शादी हुए 4 या 5 या 6 साल हो गए थे और कुछ तो 10-12 साल से शादीशुदा थे। वे आए और उन्होंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की, हमें शादी किए इतने साल हो गए, हम एक बच्चा पैदा करने में सामर्थ नहीं है, ओह हम गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा अपना एक बच्चा हो। हमने उनके ऊपर हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना की और 1 या 2 साल बाद वे आए और बताया, यही वो बच्चा है जिसके लिए हमने प्रार्थना करवाई थी, यही वो बच्चा है। हमारे पास ऐसे अनेक अनुभव हैं। बहुत से छोटे चमत्कारी बच्चे यहां हैं, जहां परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और दंपतियों को संतान प्राप्ति की आशीष दी। वो उत्तेजित थी, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं, मैं वही हूं जो यहां आई थी, मैंने इसी बच्चे के लिए प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने मेरे निवेदन के अनुसार जो मैंने उसे मांगा था मुझे दिया है। अध्याय 1 पद 28 में, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि वो अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही प्रभु को दंडवत किया। हम रविवार की सुबह बच्चों का समर्पण करते हैं जो थोड़ा बहुत हन्ना के तरीके पर ही चलना है। हम परमेश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं ये मानकर कि ये बच्चे परमेश्वर की तरफ से उपहार है। हम उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर आपने हमें ये बच्चा दिया, लेकिन हम इस बच्चे को आपको देना चाहते हैं ताकि आपके उद्देश्य के लिए ये बच्चा अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार हम परमेश्वर को बच्चों का समर्पण करते हैं। अब मैं बच्चों को बपतिस्मा देने के लिए बाइबल का कोई आधार नहीं जानता। बच्चों के बपतिस्मे के लिए मैं बाइबल से एक भी प्रमाण नहीं पाता हूं। मैं सच में विश्वास करता हूं कि बपतिस्मा एक वयस्क के ज्ञान का कार्य है। यहाँ बाइबल में बपतिस्मा के बारे में दो जगह वचन मिलता है। पहला है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। अब मुझे किसी ऐसे छोटे बच्चे से मिलना अभी तक बाकी है जिसने मन फिराया हो। मरकुस के सुसमाचार में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बच्चे विश्वास करने के लिए सच में अभी तक इतने बुद्धिमान नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चा मर जाए तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि बच्चा अगर उत्तरदायित्व की उम्र से पहले मर जाता है और वो ईसाई परिवार में है तो वो उद्धार पा लेता है। मैं विश्वास करता हूं कि पहले कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में हमें ये शिक्षा दी गई है, विश्वासी पत्नी और पति या दोनों में से किसी भी एक के विश्वासी होने से विश्वासी अभिभावक के द्वारा बच्चा मसीह में होता है, सिवाय इसके कि बच्चा अशुद्ध न हो। लेकिन अब पौलुस कहता है वे पवित्र हैं। अतः विश्वासी अभिभावक का विश्वास बच्चे को बचाने का कवच होता है। आप कहेंगे लेकिन एक अविश्वासी अभिभावक का क्या होगा? वो मैं नहीं जानता। बाइबल इसके बारे में चुप है। मुझे भी चुप रहना चाहिए। आप कहते हैं लेकिन क्या ये उचित है? परमेश्वर वही करता है जो उचित होता है, लेकिन बाइबल इसके बारे में विशेष कुछ नहीं बताती। मैं भी कुछ विशेष नहीं कह सकता। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर न्यायी है। मैं जानता हूं कि वो निष्पक्ष है और मैं अपने को परमेश्वर की धार्मिकता और निष्पक्षता के ऊपर छोड़ देता हूं। परमेश्वर निश्चित रूप से अपने सारे न्याय में ईमानदार है। एक भी इंसान को परमेश्वर के न्याय के कटघरे के सामने गलत न्याय नहीं मिलेगा। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो कहे ये न्याय नहीं है। परमेश्वर हर मुकदमे को न्यायपूर्वक निपटाएगा। परमेश्वर के न्याय के बारे में मैं पूरी तरह निश्चित रूप से आश्वस्त हूं। परमेश्वर के न्याय की संपूर्ण धार्मिकता। मनुष्य के न्याय में मुझे विश्वास कम होता है। मैं भीड़ के साथ चिल्लाता हूं ये न्याय नहीं है, लेकिन ये केवल इंसानी नजरिए से कह रहे हैं। लेकिन दैवीय या पवित्र या आत्मिक नजरिए से परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता कुछ ऐसी है जिसके बारे में मेरे मन में प्रश्न नहीं उठता है। अब मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना, या वे बच्चे जो मर गए। मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने न्याय में संपूर्ण या एकदम धर्मी और निष्पक्ष है, अतः मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन वचन या बाइबल के अनुसार बच्चे परमेश्वर को अर्पित या प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब नए नियम में जब यीशु पैदा हुआ था, वे आए और पहलौठे पुत्र के लिए बलि चढ़ाई और उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत किया। याजक ने उसे अपने हाथ में उठाया और आशीषें दी और कहा, हे प्रभु, अब तू अपने सेवक को शांति से मरने दे, क्योंकि तूने अपने उद्धार को देखने की मुझे स्वीकृति दी। लेकिन विचार ये है, परमेश्वर ये मेरा बालक है, मैं इसे आपको प्रस्तुत करता हूं ताकि आप इस जीवन को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करें और आपका प्रभाव इस बच्चे पर आए। जैसे जैसे ये बढ़ता है आप उसकी अगुवाई करें और मार्गदर्शन करें। परमेश्वर उसके सारे जीवन के लिए उसे आपको वापस देता हूं। मैं सोचता हूं कि ये अभिभावक की ओर से एक अद्भुत कार्य है। हम अपने सब बच्चों को परमेश्वर को समर्पित कर चुके हैं। दरअसल उनके पैदा होने से पहले ही हमने उन्हें परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। अब वो सत्य है कि जब वे जवान होंगे तब उन्हें अपने निर्णय लेने होंगे और वाचा बांधनी होगी। उन्हें परमेश्वर को समर्पित करने का ये मतलब नहीं कि जब वे अपनी इच्छा से चलने के काबिल हो जाएं, तब वे इस समर्पण को स्वीकार करें। लेकिन उनके बड़े होने तक हम इस आशा से आत्मिकता को उनके अंदर इस कद भर देंगे कि वे इस विश्वास से कभी अलग नहीं होंगे जो उन्होंने हमारी शिक्षाओं में अपने विकास के समय पाया। अतः ये समर्पित करने से कहीं ज्यादा है बच्चों को प्रशिक्षित करना। एक अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर की राह में उसका उचित शिक्षण करे, उनको सिखाना, उनको परमेश्वर के मार्गों में रखना, ताकि जब वे बड़े हो तो ये बातें उनके हृदय में गहराई से बस जाए और उनके सोचने विचारने का हिस्सा बन जाए।